एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे दिलों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए मदद कर और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अद्भुत युक्ति करने वाला। आइए मेरे साथ यशायाह नबी का पुस्तक से उसका 9:6 पढ़े। यहाँ पर लिखा है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह भविष्यवाणी यशायाह नबी कर रहा है अपना पुस्तक में, जिसे हम यशायाह 9:6 में पाते हैं। अपने बच्चों के प्रति प्रेम के कारण परमेश्वर उन सभी को लाभदायक सलाह देता है जो उसकी ओर देखते हैं। आज का पाठ का विषय है ईश्वर का परामर्शदाता के रूप में होना। अच्छी सलाह हमेशा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह किसी दूसरे व्यक्ति से हो या ईश्वर से हो। ईश्वर से मिलने वाली सलाह हमेशा अच्छी होती है। इस दुनिया में हम अपनी खुशी और सफलता का श्रेय दूसरों से मिलने वाली सलाह को देते हैं। दुख और गलतियां अक्सर मानवीय और दैवीय दोनों तरह की सलाह को स्वीकार न करने का परिणाम होती है। जब हम ईश्वर की सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम हमेशा खुद को चोट पहुंचाते हैं। ईश्वर के वचन में मुख्य रूप से प्रभु द्वारा दी गई सलाह शामिल है। यह हमेशा सबसे अच्छी सलाह होती है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें यहाँ खुशी, समृद्धि और शांति देने और परलोक में अनंत आनंद देने के लिए बनाई गई है। हम ईश्वर के वचन में पाई जाने वाली स्वर्गीय सलाह की बुद्धिमता और मूल्य को केवल थोड़ी सी हद तक ही पहचान पाए हैं। आदेशों पर ध्यान देने से हमारी बुद्धि का विस्तार होगा, हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा और हमारी आत्मा शुद्ध होगी। आइए हम यशाया 40 अध्याय का 13 और 14 पद देखें। वहां पर बुद्धि की सलाह दी गई है। परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की अनोखी बात करते हैं। संसार के रचयिता जो शक्ति बुद्धि और ज्ञान में असीम है, उसने संसार को बनाते समय किससे परामर्श लिया होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? उसे किसी से परामर्श या सलाह लेने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि वह परमेश्वर है। वह सब कुछ जानता है, वह आदि से है। केवल वही सब कुछ जानता और समझता है, केवल वही दूसरों को सिखा सकता है। लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे निर्देश दे सके। केवल वही सबको अचूक सलाह दे सकता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे मार्ग दिखा सके। सुलेमान ने नीति वचन 12 का 15 पद में लिखे हैं, मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूर्ख अपने बात को वह सीधा समझता है, लेकिन जो दूसरों का सलाह लेता है, बुद्धिमान लोगों का सलाह लेता है, वह सचमुच में बुद्धिमान है। परमेश्वर की बुद्धिमता और प्रेम की सलाह को स्वीकार करना परमेश्वर का हाथ थामने जैसा है। इन सलाहों के बिना हम दुष्टों से अलग नहीं हैं, जो गहरे अंधकार में टटोलते रहते हैं और नहीं जानते कि वे किस बात पर ठोकर खा रहे हैं। भजनकार ने लिखा है, मैं प्रभु को धन्य कहता हूँ जो मुझे सलाह देता है, फिर अपने उपकारकर्ता को संबोधित करते हुए वह कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाता है। यह हम पाते हैं लिखा है भजन संहिता 16 का 7 और 11 में। एक है जो मार्ग जानता है और हम सुरक्षित रूप से उस पर अपने कदम रख सकते हैं। ईश्वर बुद्धि का अवतार है, इसलिए उसकी सारी सलाह बुद्धिमानी भरी है। और ईश्वर प्रेम का अवतार है, इसलिए उसकी सारी सलाह अच्छी है। हमारे लिए बुद्धि की सलाह सुनना बुद्धिमानी है। वह अपनी बुद्धि को अपने पास ही रख सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो वह ईश्वर नहीं होता, क्योंकि प्रेम के लिए अपनी बुद्धि और सलाह को जरूरतमंदों के साथ साझा करनी जरूरी है। परमेश्वर तुम्हें अपना मार्ग सिखाएगा। उसकी इच्छा जानने के लिए प्रतिदिन उससे पूछताछ करो। वह उन सभी को अचूक सलाह देगा जो सच्चे दिल से उसकी खोज करते हैं। यह बहन एलन जी वाइट लिखी है, चर्च के लिए गवाही में, खंड 9 का पृष्ठ 276 में। आई हम यिर्मयाह 31 का 3 पद देखें। यहाँ पर प्रेम की सलाह दी गई है, आई हम इसे देखते हैं। लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्यारो, सच्चा प्यार कभी नहीं भूलता, यह हमेशा मदद करना चाहता है, कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। स्वर्गीय सलाह हमें जीवन में प्राप्त होने वाले सभी महान मूल्य प्रदान करती है। लोगों की सलाह हमेशा प्यार से प्रेरित नहीं होती और हमेशा बुद्धिमानी से नहीं दी जाती, लेकिन परमेश्वर की सलाह हमेशा प्यार से प्रेरित होती है प्यारो, और हमेशा मददगार और बुद्धिमानी भरी होती है। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता है और अनुशासित करता है, यह लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:19 में, क्योंकि वह उन्हें प्रेम करता है और चाहता है कि वे सीधे मार्ग को अपनाएं और सीधे मार्ग में चले। यीशु ने कभी कभी कठोर फटकार के रूप में सलाह दी, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो यह प्रेम से प्रेरित था। उसने मानवीय कमजोरी की निंदा नहीं की, उसने सच बोला, लेकिन हमेशा प्रेम से। आए हम मत्ती 19:21 में एक सलाह पढ़ेंगे जो यीशु ने एक धनी युवा शासक को दी थी। वहां कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर हमसे किसी ऐसी चीज को छोड़ने की अपेक्षा नहीं करता जिसे बनाए रखना हमारे सर्वोत्तम हित में हो। वह जो कुछ भी करता है उसमें वह अपने बच्चों की भलाई को ध्यान में रखता है। काश वे सभी जिन्होंने मसीह को नहीं चुना है वे यह महसूस कर पाते कि उनके पास उन्हें देने के लिए उसे कहीं बेहतर कुछ है जो वे खुद के लिए चाह रहे हैं। मनुष्य अपनी आत्मा के साथ सबसे बड़ी चोट और अन्याय कर रहा होता है जब वह परमेश्वर की इच्छा के विपरीत सोचता और कार्य करता है। आइए हम आगे पौलुस के विषय में और उसके शिष्य तिमोथियस के विषय में चर्चा करें, उनके विषय में बातें करें। यहाँ पर पौलुस एक सेवक को सलाह देता है, इसे हम पढ़ते हैं 2 तिमोथियस 1:2-7 पद में। यहाँ लिखा है, प्रिय पुत्र तिमोथियस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालांकि पौलुस के शब्द तिमोथियस को संबोधित थे, फिर भी वे उन सभी के लिए मूल्यवान है जो परमेश्वर का सहायक बनना चाहते हैं। तिमोथियस एक युवा सेवक था जिसका भविष्य उसके सामने था। पौलुस उसे अपना पुत्र के समान प्रेम करता था। अपने काम में तिमोथियस वह केवल औसत दर्जे का हो सकता था, वह असफल हो सकता था या वह एक असाधारण सफल व्यक्ति भी हो सकता था। पौलुस ने तिमोथियस को अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसे वह सर्वोत्तम सलाह दी जो वह दे सकता था, ताकि वे बहुत ही सफल हो सके। पौलुस ने तिमोथियस से उन बातों पर ध्यान लगाने का आग्रह किया जो शुद्ध और उत्तम है, ताकि उसका लाभ सब पर प्रकट हो। वर्तमान युग के लोगों को भी इसी सलाह की बहुत आवश्यकता है। पौलुस अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करता है कि वह हर विचार हर कार्य में पवित्रता की आवश्यकता है। हमारे पास ईश्वर के प्रति एक व्यक्तिगत जवाबदेही है, एक व्यक्तिगत कार्य जो कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। यह दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास है, जबकि हमें मिलनसारिता विकसित करनी चाहिए। इसे केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए होना चाहिए। जब कोई सही पक्ष में होता है तो परमेश्वर की ओर होता है, तो डरने का कोई कारण नहीं होता। आप देख लीजिए यीशु के जीवन में जब तूफान उसके सामने आया, वह शांत था, वह निडर था, और एक समय 2 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग उसके सामने आए। उसके चेले डर गए, घबरा गए, वहां से दूर भाग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वहां डटे हुए था। वह साहसी बना रहा, वह नहीं डरा, वह निडर था क्योंकि वह सही का पक्ष रखता था, हमेशा सत्य बोलता था और परमेश्वर के संगति में रहता था। हमारे लिए स्वर्ग की सलाह मिलती है जिसे बुद्धिमान राजा सुलेमान अपने पुस्तक सबोपदेशक में लिखा है। इसे हम पढ़ते हैं उसके 12 अध्याय का 13 पद में। आइए हम इसे देखें। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सुलेमान ने यह सलाह सारे मनुष्य जाति को दिया है, दुनिया के सभी लोगों को यह सलाह दिया है कि वे लोग सुने कि परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। इसलिए हमारा कार्य क्या है कि हम परमेश्वर का आज्ञा माने, हम परमेश्वर का भय और डर माने और परमेश्वर का सम्मान करें, उसकी आज्ञा माने। इससे बेहतर कोई सलाह नहीं दी जा सकती कि पहले कामों को प्राथमिकता दी जाए। सच्चे धर्म में प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है। अनंत काल दांव पर लगा है, अगर हम स्वर्ग खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। भाइयों, अगर हम इस दुनिया में ईश्वर को नहीं पाते हैं और उनके बताए तरीकों के अनुसार जीने में विफल रहते हैं तो हम न केवल इस जीवन की सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ चीजों को खो देते हैं बल्कि अनंत जीवन को भी खो देते हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि स्वर्ग में एक ईश्वर है और हमें उसके प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, एक ऐसी निष्ठा जिसकी उपेक्षा हम केवल अपने वर्तमान कल्याण और शाश्वत सुख की कीमत पर ही कर सकते हैं। जब हम प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा की उपेक्षा करते हैं तो हम खुद की और दूसरों की और इस दुनिया की उपेक्षा करते हैं जिसमें हम रहते हैं। ऐसी लापरवाही की कीमत है धरती पर ईश्वर की भलाई और प्रेम के बिना जीवन और स्वर्ग में जीवन की हानि। मीका नबी ने परमेश्वर की अपेक्षाओं का सारांश मीका 6:8 में दिया है, यह बहुत ही बहुमूल्य है। आइए हम इसे ध्यान से पढ़ें। यहाँ लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6:8। अब हम देखेंगे अंतिम दिन के लोगों के लिए बाइबल में क्या सलाह दिए गए हैं, विशेषकर उसके चुने हुए लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए जो यीशु मसीह को प्राप्त किए हैं, उसे पहचाने हैं। जब वे उसके बातों को सुने, उसे अपनाएं, उसको स्वीकार किए, तो उनको यह प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा दिया गया है कि वे लोग यदि विश्वस्त रहेंगे तो यीशु मसीह उन्हें फिर लेने आ रहा है कि जहां वह स्वर्ग में रहते हैं वहां वे इन विश्वासियों को भी, इन भले लोगों को भी, धर्मी लोगों को भी ले जाएंगे। लेकिन अंत के दिनों में कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं उसके दल में भी जो तैयार नहीं है। यह प्रकाशित वाक्य 3:18 में हम पढ़ पाते हैं। लौदिकिया की कलीसिया के विषय में कहा गया है, लौदिकिया की कलीसिया को यह सलाह दिया गया है। वहां भी बहुत से ऐसे विश्वासी थे जो कि परिपूर्ण नहीं थे, वे लोग दुनिया में मिले हुए थे और परमेश्वर में उसका विश्वास पक्का नहीं था और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको सलाह देते हैं। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये लोग अपने आप को धनी धनवान समझ रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह उन्हें चेतावनी दिया, अपने आप को इतना धनवान मत समझो, तुम लोगों को जरूरी है असली सोना की जरूरी है जो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता। सच्चा चरित्र, धार्मिकता का चरित्र केवल यीशु मसीह दे सकता है उनको, और वह उनकी जरूरत थी। हमें इस दुनिया की चीजों में अमीर होने की जरूरत नहीं है प्यारो, लेकिन हमें आध्यात्मिक धन की जरूरत जरूर है। सोने सफेद वस्त्र और आंख के मरहम के प्रतीकवाद की व्याख्या इस प्रकार की जाती है, सोना विश्वास जो प्रेम से काम करता है, सफेद वस्त्र मसीह की धार्मिकता है, और आंख का मरहम ईश्वर की आत्मा के माध्यम से सत्य और त्रुटि के बीच अंतर करने की क्षमता। मत्ती 25 का 13 में यीशु मसीह का हमें सलाह मिलता है कि हमें हर वक्त हर समय चौकस रहने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को कहा कि वह स्वर्ग जा रहा है उनके लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर वह लौट करके आएगा, उस दिन के लिए तुम लोग तैयार रहना, चौकस रहना। ऐसा ना हो कि तुम लोग भूल गया और दुनिया में व्यस्त हो, दुनिया में तुम लोग ठगा गए हो। इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों को इस तरह का सलाह देते हैं। परमेश्वर ने इस बारे में कई विवरण दिए हैं कि संतों को किस तरह के लोग होना चाहिए ताकि वे उसके आगमन के लिए तैयार रहें। आइए हम कुछ विशेषताओं को देखें प्रभु के वचन से। पहले तो है पहला है सम्मति रहने की सलाह हमें मिलता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में कहता है कि दिन का समय काम करने का समय है, सोने का नहीं है। इसका हम तुलना यूहन्ना 9:4 से कर सकते हैं। दूसरा बात हमें कहता है कि हमें हमेशा परिश्रमी रहना चाहिए। दूसरा पत्रस 1:10-11 में हम पाते हैं, यद्यपि हम बुलाए गए और चुने गए हैं, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम गिर ना जाएं। तीसरा कहता है हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22:14 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है, सबका प्रतिफल उनके पास है, जो जैसा काम किए हैं वैसा ही उनको प्रतिफल दिया जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उसकी आज्ञा का आज्ञाकारी बने। चौथा है हम आत्मविश्वासी बने। इब्रानियों 10:35 में हमें यह सलाह मिलता है, प्रतीक्षा और अनिश्चितता के दौर आ रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। पांचवा है हमें धीरजवान होना है। इब्रानियों 10:36-37 में हम इस बात को पाते हैं, मसीह का आना उतना ही निश्चित है जितना कि रात के बाद क्या होती है, सुबह होती है, दिन आता है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करते रहने के लिए यीशु मसीह सलाह देता है, वह किसी भी दिन आएगा, उसका आना निश्चित है, वह जरूर आएगा। अगला कहता है हमें विजय पाने के लिए काम करना है, तैयार रहना है, उसकी सलाह को मानना है। प्रकाशित वाक्य 2:7 कहता है मसीह के लिए एक वफादार योद्धा है, विजय उनके लिए सुनिश्चित है जब वे उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी सलाह लेते हैं। प्यारो, बहन एलन जी वाइट मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग मंत्रालय पुस्तक का पृष्ठ 283 में बतलाती है इजरायली लोगों के विषय में, यदि वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो क्या होता, यदि वे ईश्वर के सलाह को मानते तो क्या आशीष उन्हें मिलता। यहाँ लिखा है यदि इसराइलियों ने उन्हें प्राप्त निर्देशों का पालन किया होता तो उनके लाभों से लाभ उठाया होता, तो वे दुनिया के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि का आदर्श उदाहरण होते। यदि एक राष्ट्र के रूप में वे परमेश्वर की योजना के अनुसार जीते तो वे उन बीमारियों से सुरक्षित रहते जो अन्य राष्ट्रों को पीड़ित करती हैं। अन्य किसी भी राष्ट्र से अधिक उनमें शारीरिक शक्ति और बुद्धि की शक्ति होती, वे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होते। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह की दासी यह कहती है, प्रभु परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं कि इसराइली लोगों को सलाह दिया गया था, उन्हें चुना गया था और उन्हें सलाह दिया गया था कि वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, अगर वे उसके नियम पालन करते हैं तो वे लोग स्वस्थ रहते और बीमारियों से दूर रहते और दूसरे राष्ट्रों से अधिक उन्नति करते। परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा था, उनके लिए आशीष था। और यदि आज हम भी उस तरह का आशीष पाना चाहते हैं तो उसकी पवित्र शास्त्र को, बाइबल को आइए हम पढ़ें और उसके सलाह को हम माने, हम उन्नतशील होंगे, परमेश्वर हमें आशीष देवे। प्यारो, परमेश्वर चुप नहीं है, वह बोलता है, वह जो कहता है उससे उसकी सृष्टि को लाभ होता है। हालांकि आदम और हवा अवज्ञा और विद्रोह करके उसे दूर चले गए, फिर भी परमेश्वर चुप नहीं रहा, वह उनको खोजने आया, उसने संपर्क बनाए रखा। प्यारो, आज परमेश्वर हम से भी यही उम्मीद करता है और वह हमें खोजने आता है। हम पाप में गिरे हैं, ये दुनिया में पाप में भटक गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें खोजने आता है और हमें पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो, और चाहता है कि हम उसके पीछे लौट आए और उसकी सुने और उसकी सलाह को माने कि हम सच्चाई का मार्ग पाए और अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर आपके संग रहे और परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप प्रभु यीशु मसीह के सलाहों को सुनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन सलाहों के लिए कि जब हम तेरे बातों को मानेंगे, तेरे राह में चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और समृद्धि होंगे, हम उन्नति करेंगे पिता। तो इसके लिए हमें मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे राह में चल सकें। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।